है
सत्य अगर बलवान है
सत्य अगर भगवान है
बलवान है
बलवान है हाँ
तो असत्य को ताकत कहाँ से मिलती है।
जो सत्य है अपन को कहते हैं हम सच्चे हैं और बाकी सारी दुनिया झूठी है हमारे मुकाबले, तो वो झूठ कहते हैं या सत्य कहते हैं है? झूठ कहते हैं ना, वहीं से ताकत आ जाएगी, झूठ को भी ताकत आ जाती है। खुद झूठ हैं और कहते हैं हम सत्य हैं, तो अंदर जो निश्चय बैठा हुआ है वो निश्चय उनको ताकत दे देता है। लेकिन सदाकाल की ताकत नहीं हो सकती, सदाकाल की ताकत है एक शिव बाप में है, वो कभी झूठा नहीं बनता क्योंकि त्रिकालदर्शी है। क्यों त्रिकालदर्शी है? क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और हम आत्मा है जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसीलिए पूर्व जन्मों की बात भूल जाती है। मृत्यु एक ऐसा कड़ा एक्सीडेंट है जिससे दुनिया में कोई का सर फट जाता है, खोपड़ा फट जाता है और किसी तरह डॉक्टर लोग उसे जीवित कर लेते हैं, लेकिन पहले की सारी बातें भूल जाता है। ऐसे ही मृत्यु एक एक्सीडेंट है जिसमें पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल जाती हैं। क्यों भूल जाती हैं? क्योंकि मनुष्य आत्माएं सब संग के रंग में आकर के झूठी बन जाती है और झूठों का हुजूम बढ़ता जाता है या घटता है। और कलयुग में तो ये खास गायन है, संगो शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। जैसे इस्लाम धर्म विधर्मियों और विदेशियों के बीच में इस्लाम धर्म सबसे पुराना और सबसे पावरफुल है। क्यों है? क्योंकि उनका संगठन बड़ा मजबूत है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे उनकी बुद्धि काबा में ही रखी रहेगी। काबा को ही वो सर्वोच्च शिखर मानते हैं, वहां सब जाकर के इकट्ठे होते हैं। तो संगठन की शक्ति जास्ती होने के कारण दुनिया में जो भी हिस्ट्री है राजाओं की, उस हिस्ट्री में उन इस्लामियों ने इस सारी दुनिया पर राज्य किया है। क्या सच्चे हैं? हैं? सच्चे तो नहीं है। देवहन की शक्ति है या आत्माभिमान की शक्ति है? देवहन की शक्ति है। देवहन में भी जो इंद्रिय बड़ी प्रबल है वो पावर उनके अंदर है, जिस पावर के कारण वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर लेते हैं, सारी दुनिया पर उनका राज्य हुआ। तो देखो देह झूठी है, देह की वो कर्मेंद्रियां भी झूठी हैं नंबर वन, परंतु फिर भी उस झूठ की ताकत चलती है या नहीं चलती है? ढाई हजार साल चलती है। तो कौन सी ताकत है वो है? अरे अभी तो बताया, संगठन की शक्ति। और
कहाँ यादगार है ना,
वो भूत प्रेतों का यादगार है दिलवाड़ा मंदिर।
दिलवाड़ा मंदिर भूत प्रेतों का बंदे सुनने का,
किसने कहा
ऐसा कहा?
अरे सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना है या नहीं करना है? फिर आपने क्यों कर लिया? बाबा ने तो मुर्दिम बोला है, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई, वो तो 5000 वर्ष की बात हुई, उसमें भी खास 2500 वर्ष की बात हुई, आप तो संगम युग में ही शूटिंग कर रहे हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की। हाँ माउंट आबू में क्या, दुनिया में कहीं भी ईश्वरीय सेवा के लक्ष्य के बगैर घूमना फिरना ये भूतों का काम है।
दिलवाड़ा में जाना मना कर दिया ना?
मना कर दिया? वहाँ से कोई सेवा का संदेश लेके आए, कोई सेवा का प्रूफ निकाला? जब गए थे घूमने तो क्या लक्ष्य लेकर के गए थे? सेवा करने का, तो सेवा की? कोई ने सेवा का प्रूफ निकाला? नहीं निकाला। तो घूमना फिरना भूतों का काम हुआ या देवताओं का काम हुआ? ज्ञान को क्या कहा? डैम रुका हुआ पानी। हाँ
आर्टिफिशियल कैनल निकलते हैं।
हाँ आर्टिफिशियल जो कैनाल हैं वो आर्टिफिशियल नदियाँ हैं। कुमार पवित्रता होती है या नहीं होती है? ज्यादा पवित्रता होती है। बाबा ने इसीलिए बोला हुआ है कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं प्योरिटी की पावर से। तो प्योरिटी की पावर से जिन भी आत्माओं को ज्ञान सुनाएंगे वो आत्माएं ज्ञान में होशियार हो सकती हैं या नहीं हो सकती है? होशियार हो सकती है तो कैनाल से भी बन सकती है। और हाँ
तो कोई आत्मा बाबा का बच्चा 6 महीने के लिए या ज्यादा दिन के लिए बाहर गाँव जाना पड़ेगा यानी जाना होगा।
वहाँ भगवान आया हुआ है?
नहीं सेवा के लिए भी और काम के लिए भी।
सेवा भारतवासियों की नहीं करनी है पहले? बाबा कहते पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। विदेश में पहले सेवा रखी हुई है, वो जल्दी ज्ञान को समझेंगे क्योंकि भाषा दूसरी है, उनकी परंपराएं दूसरी हैं, उनका वातावरण दूसरा है, उनकी पढ़ाई भी विदेशी है, वो जल्दी समझेंगे ईश्वर के ज्ञान को।
नहीं पड़ेगा
मना मजबूरी है, ये देह की मजबूरी है या आत्मा की मजबूरी है?
गया तो जा सकता है कि नहीं?
बाबा किसको मना करेंगे? नहीं मना भी करेंगे तो भी जाएगा और ज्यादा पाप चढ़ जाएगा, इसलिए बाबा मना नहीं करते किसी को। कह के जाते हैं हम सेवा करेंगे लेकिन सेवा का रिजल्ट कुछ भी नहीं आता।
और इसके बाद उसको फिर से बार बार भर्ती करना पड़ेगा? बार बार भर्ती करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा?
बार बार भर्ती करना पड़ेगा,
नहीं सेवा करेगा। अगर जाएंगे तो वहाँ पे भर्ती करनी पड़ेगी
वहाँ?
नहीं
ऐसी कोई बात नहीं है।
नहीं तो जा सकता है क्या?
वहाँ विदेशों में भी क्लासेस चलते हैं, उन क्लासेस को कोई लगातार रेगुलर अटेंड कर सकता है। अगर अटेंड करता है तो बाबा तो कहते हैं कोई एक बार भट्टी करके 7 दिन की सारी जिंदगी के लिए भी लाइफ चला जाए, ईश्वरीय सेवा करता रहे वो 108 की माला में भी आ सकता है। अगर झूठ नहीं बोलता है तो सच्चाई ये है कि देह के संबंधियों के आकर्षण के आधार पर आकर्षित होकर के जा रहे कहते हैं हम ईश्वरीय सेवा के लिए जा रहे हैं। भगवान बाप को ऐसे बताते हैं और जाते हैं देह के संबंधियों से आकर्षित होकर के। तो लक्ष्य क्या है? जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आएंगे। हाँ,
लेकिन बाबा यहाँ भगवान में बता के जाएंगे तो क्या?
तो बता के जाएंगे वो और अच्छी बात है, क्योंकि कोई कोई तो बता के भी नहीं जानते जाते। देह के संबंधियों को इतना प्रेफरेंस देते हैं कि अपने अलौकिक परिवार में बता के भी नहीं जाते। तो बता के जाने वाले तो उनसे अच्छे हुए ना। हाँ जी,
ब्रह्मा की छह मानसिक ग्रह सनातन हुआ है, तो कौन सी ब्रह्मा की बात है?
जो बच्चे पैदा किए ब्रह्मा ने पहलौटी के, वो बच्चे इंद्रियों की संतान थे या मनसा के संकल्पों की संतान थे? है? हाँ, मानसिक शक्ति रची। और जो मानसिक शक्ति रचने वाला ब्रह्मा होगा वो मन को कंट्रोल करने वाला होगा, तभी शक्ति रची जाएगी। या मन कंट्रोल से बाहर होगा तब पावरफुल शक्ति रची जाएगी। है? तो कौन सा ब्रह्मा होगा? है? जरूर उसको कहेंगे परम ब्रह्म, जो ब्रह्मा नामधारियों में से परे से परे है।
अब उसमें शरद कुमार है ना?
है,
इसमें चारों में एक शरद कुमार है ना?
हाँ जी,
बच्चा भी बोलता है।
है,
शरद कुमार है ना?
हाँ है।
तो मतलब कि आप भी बच्चा भी मतलब ब्रह्मा के चार पुत्रों में
चार पुत्रों में से कौन सा पुत्र है जो ज्ञान योग का ईश्वर कहा जाता है, ज्ञानेश्वर कहा जाता है, योगी ईश्वर कहा जाता है, वो कौन है? सनक कुमार है और योगी ईश्वर। इसलिए कहा जाता है कि योगियों का जो ईश्वर आत्मा है वो इसमें प्रवेश है। इसलिए वो बड़े से बड़ा ब्राह्मण भी है, बड़े से बड़ा देवता भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। शूद्रों में भी बड़े से बड़ा वो है, वो अच्छे से अच्छा पाठधारी भी है और बुरे से बुरा पाठधारी भी है। बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा।
ट्वेंटी सिक्स में।
हाँ जी, 40 साल पूरे हुए 60 के बाद अमर लोक चालू हो जाता है। माना मन जो है, मन जिसे आत्मा कहा जाता है, मन रे व आत्मा, ऋग्वेद की ऋचा में ये आया है। बाबा भी कहते हैं मन बुद्धि ही आत्मा है। तो जो आत्मा है वो मन के आधार पर श्रेष्ठ संकल्प ही करेगी या भ्रष्ट संकल्प ही करेगी? है, श्रेष्ठ संकल्प करती है, इसलिए वो और आत्माओं के मुकाबले भ्रष्ट संकल्प करने वाली नहीं है। क्योंकि ज्ञान जब तह तक समाया हुआ होता है, जीवन ईश्वरीय कार्य के लिए पूरा अर्पण हो जाता है, तो जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन लगेगा, जहाँ हमारा धन जाएगा वहाँ हमारा मन जाएगा।
मैंने पढ़ा था किसी तरह के रूप में ब्रह्मा की आयु खत्म होती है।
हाँ, तो मृत्युलोक में आ जाता है या मन के संकल्पों से स्वर्ग लोक में आ जाता है, है? मानसिक रूप से स्वर्ग लोक में है या नरक में है, ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर दुख के जीवन को भी सुख में कन्वर्ट करने की शक्ति है या नहीं है, है? इसलिए कहा जाता है
बाबा इसमें ब्रह्मा जी आयु सब कुछ होती है तो ऊर्जा मरण की
ज्यादा लेख रहा है। हाँ,
तो
दादा लेखराज वाली आत्मा बाप की वाणी को बच्चा बुद्धि बन करके समझ रही है या बालिक बुद्धि बन करके समझ रही है? जल्दी बोलो, है बच्चा बुद्धि है, तो जो बच्चा बुद्धि है उसकी एज कम होगी बाप के मुकाबले या ज्यादा होगी? तो वो जो कम एज है वो साबित होता है कि शिव बाप ने जब से उसमें मुरली चलाना शुरू की तब से गिना जाएगा उसकी 60 साल आयु। हम 47 से पहले तो मुरली नहीं चलाते थे, चलाते थे नहीं चलाते थे, बाप प्रवेश करते थे, बाबा लिखते थे, बाद में उसकी कापियां निकलती थी जो क्लास में सुनाई जाती थी, मुरली तो नहीं चलती थी। तो मुरली ब्रह्मा के तन से 47 से चलना शुरू हुई और बताया भी है, पता कैसे चलता है, इनमें बाप भगवान है, है? जब ज्ञान सुनाते, तो ज्ञान सुनाना दादा लेखराज की आत्मा ने कब से शुरू किया है? 47 से, तो 10 साल आगे जाएगा ना उनका अमर लोक। नहीं समझ आया? हाँ, और
पवित्र और पावन
हाँ, पवित्र और पावन,
पवित्र और पावन
वो एक ही बात है,
अपवित्र पवित्र,
अपवित्र पवित्र, पतित और पावन
अलग
हो, एक ही मान तो है। पवित्र माने जिसमें तेज ही तेज है, निस्तेजता की बात नहीं, अपवित्र माने तेज गया तो अपवित्र हुआ। सब तो कहते हैं पुरुष में जो वीर की शक्ति है वो सत्व है, सार है, उससे ज्यादा सार तत्व तो और कोई है ही नहीं। इसलिए पवित्रता जो है वो उस सार को कहा जाता है। एवर प्योर कौन है? एवर प्योर वो है जो इस पतित दुनिया में पतित शरीर में आता है तो भी मन बुद्धि से या शक्ति से क्षरित नहीं होता है, उसको कहते हैं अक्षर। बाकी सब मनुष्य आत्माएं हैं क्षर, उनमें भी क्षरित होने वाली क्षर आत्माओं में भी कोई आत्मा ऐसी है जो पुरुषार्थ करके जन्म मरण के चक्र में आने वाली जो पुरुष रूप आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच पुरुषोत्तम बन जाता है। वो तीसरे प्रकार की आत्मा है जिसे विष्णु कहा जाता है, परम पद। दो तरह की आत्मा है, एक सर 500 करोड़ और एक अक्षर शिव। और जो चरित होने वाली आत्माएं हैं उनके बीच में भी एक ऐसी आत्मा है जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है अक्षर, तो उसको क्या बना देता है, है? आत्माओं के बीच में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनके बीच में पुरुषोत्तम बनाई देता है। तो गीता में बोला गया है परमात्मा इति उदाहरत है, वो परमात्मा कहा जाता है। इसलिए जब हम बुलाते हैं टाइटल देकर के तो कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव। परमात्मा पहले क्यों नहीं बोलते, परमात्मा परम पिता क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते है? क्योंकि परम पिता श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, आत्माओं का पिता है। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो इस सृष्टि पर श्रेष्ठ बनता है आकर के, या परमधाम में रह करके श्रेष्ठ है, है? इस सृष्टि पर आता है, श्रेष्ठ कर्म करके दिखाता है, तब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ कर्म? जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करता है रथ में प्रवेश करके, वो सारे ही कार्य कल्याणकारी साबित होते हैं या अकल्याणकारी साबित होते हैं? अकल्याणकारी साबित नहीं हो सकते, कल्याण ही कल्याण है। वो कार्य करने वाली एक ही आत्मा है, कौन है? शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं कभी कल्याणकारी और कभी अकल्याणकारी भी साबित होती है। हाँ जी, अष्ट देवों में एक देवता महादेव उत्तर और पूर्व के कोने में दिखाया जाता है। उस कोण को क्या कहते हैं? ईशान कोण, जहाँ ईश्वर वास करता है। दुनिया के नक्शे में भी जापान एक ऐसा देश है जहाँ सूर्य की किरणें पहले पहले पड़ती है, इसलिए जापानी लोग मानते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। वास्तव में वो हद के जापान की बात नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेहद का जापान है, जो सन 1942 के बाद उसका बड़े से बड़ा हिस्सा पहले ध्वस्त हो गया था, भक्ति मार्ग में उसका नाम दिया गया है दुनिया में हिरोशिमा नागासाकी, हीरों की क्षमा। ये चैतन्य हीरों की बात है। नागासाकी ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे नाग हैं जो भगवान के गले पड़ जाते हैं। नाम दे दिया है वासुकी नाग, क्या नाम दिया है? वासुकी। नाम दिया है वासुदेव। वसु का पुत्र वासुदेव, वसु का पुत्र वासुकी। पुत्र अर्थ में एक मात्रा बढ़ती है। वसु कहेंगे धन संपत्ति का स्वामी, अकूट धन संपत्ति का स्वामी कौन है जिसकी धन संपत्ति कभी खूटती ही नहीं? कौन है? है भगवान ही है। ऐसा का ज्ञान का भंडार है जो अखूट है, पूर्णमिदं पूर्णमदः है। श्लोक बनाए हुए हैं गायन में, उस पूर्णात्म से पूर्णम उदच्यते, पूर्ण ही निकाल लो तो भी क्या बचेगा, पूर्ण ही बचता है। ऐसा खूट भंडार है वसु। वसु माने धन संपत्ति का भंडार और उसका बच्चा। बताओ इस साकार दुनिया में शिव का वो साकार पार्टदारी कौन है जिसके संग के रंग में कोई भी कितने भी आए, कितने भी सर्प सर्पणियां पड़े रहे पीछे, जो संपन्न स्टेज विष्णु की दिखाई है, कौन सी शैया पर आराम से लेटा हुआ है? सर्प सर्पणियों की शैया पर आराम से लेटा हुआ है। नीचे भी सर्प सर्पणियां, ऊपर भी है सर्प सर्पणियां, चारों ओर से घेरे हुए, तो भी उसको संग का रंग लगता है, वो विषैला बनता है। क्या कहा जाता है? नाम क्या है? है विष्णु। नो विषय काल चंदन दिश व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। जैसे चंदन का वृक्ष होता है, विष उगलने वाले सर्प है उसमें चिपके हुए रहते हैं, लेकिन वो विषैला नहीं बनता, सुगंध ही छोड़ता है या दुर्गंध छोड़ता है। ऐसे शिव बाबा का वो साकार पाठधारी जिसकी संपन्न स्टेज दिखाई गई, वो हुआ वसु प्रैक्टिकल में, और उसका बच्चा वासुकी या वासुदेव कौन हुआ? वासुदेव किसका नाम है? हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहते हैं ना, वो किसके लिए कहते हैं? कृष्ण के लिए कहते हैं। उन्होंने सत्युग का नारायण समझ लिया, किन्होंने? भक्तों ने। लेकिन सत्युग के नारायण की बात है क्या? सत्युग के नारायण और त्रेता के राम की हिस्ट्री किसी मनुष्य के पास है ही नहीं। मनुष्यों के पास प्रूफ सहित हिस्ट्री सिर्फ 2500 वर्ष की है। बस 2500 वर्ष की हिस्ट्री को उन्होंने संबत में संजोया हुआ है, ख्रिस्त संबत। विक्रम संबत, शक संबत, हूँ संबत, जितने भी मनुष्यों के बनाए हुए संबत हैं वो 2500 वर्ष के अंदर के हैं। उससे पहले का कोई संबत नहीं है। इससे साबित होता है कि मनुष्य जब दुखी हुए तो दिन गिनने लगे और संबत बन गए। दुख में मनुष्य दिन गिनता है या सुख में गिनता है? दुख में समय गिना जाता है। तो ये 2500 वर्ष है मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री है, मनुष्यों का बनाया हुआ राज्य है, मनुष्यों का बनाया हुआ धर्म है संसार में। भगवान का धर्म नहीं है, भगवान तो स्वयं वसु है, धन संपत्ति का स्वामी है, वो इस शक्ति पर आता है तो कृष्ण का राज्य स्थापन करता है, वासुकी का राज्य स्थापन करता है, वासुदेव का राज्य, जिसे नारायण का राज्य कहा जाता है, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं है कि नारायण असलियत में सतयुग में वो गायन पक्का नहीं है, पक्का गायन है नर से नारायण बनने का। उस संगम में जब भगवान बाप आते हैं तो नर को नारायण बनाते हैं, इसी जन्म में बनाते हैं, पढ़ाई पढ़ा करके, अगले जन्म में नहीं, अभी बनाए रहे, लक्ष्य दिया हुआ है, क्या बनना है, नर से नारायण बनना है, नहीं तो नारायण जैसा बनना है, बनना नारायण जैसा है, यथा राजा तथा प्रजा, कम गला वाला नहीं बनना है। हाथ तो उठाओ। हाँ
निरंतर याद करो।
हाँ
मुझे याद करो।
हाँ मामे को भी याद करो। है मुझे याद करो को मतलब जैसे ब्रह्मा कुमारियाँ समझती हैं, बिंदी को याद करो। अब वो बिंदी है कौन सी बिंदी है, ये ढेर मंदी बैठी हुई है, मैं आत्मा भी बिंदी हूँ, किसको याद करे। अरे शिवो हम, मैं आत्मा ही शिव भगवान हूँ, मुझे याद करो। माम एकम को याद करने का मतलब क्या हुआ, कोई भी आत्मा को याद करो, हैं? बिंदी 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 सब एक जैसी, तो कौन सी एक बिंदी को याद करो। अरे कोई स्पेशल बिंदी है या कोई भी बिंदी को याद करें, है? कोई भी कीड़े मकोड़े की बिंदी को, है? मान एकम का क्या मतलब हुआ, मुझे एक को याद करो, इसका मतलब क्या हुआ, एक बिंदी को याद करो, साकार में निराकार को, ये सब साकार ही तो बैठे हैं, इन साकार में निराकार बिंदी को हम याद करते हैं। हैं? किसको याद करो, मुकर्रर रथ, कैसे पता चले ये ही मुकर्रर रथ हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैसे पता चले। हैं? सब कहेंगे हम राम हैं आत्मा, हैं? आसाराम बापू के भक्त कहेंगे हमारे आसाराम बापू ही भगवान राम है, वो जैसा ज्ञान वो देते हैं, जितना प्रसन्न वो अपने जिज्ञासुओं को करते हैं, ऐसा कोई गुरु करता ही नहीं।
है?
आपको ज्ञान है इसका कैसे प्रूफ है? भगवान ये पहचान क्या है कि भगवान ने दिया या शैतान ने दिया, अगर भगवान ने ही दिया तो भगवान जब आते हैं तो कलंक इधर क्यों बनते हैं, कलंक धारण क्यों करते हैं, कलंक लगाने वाले होते हैं दुनिया में ढेर के ढेर, तभी तो कलंक इधर बनते हैं, तो भगवान के ऊपर कलंक कैसे लग सकते हैं। हैं? कौन है ज्ञानी, शिव बाबा ज्ञानी, कैसे पता चले शिव बाबा कहाँ है, है? अंधे की बात हो गई ना, ज्ञान दे रहे, अरे कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, आदि मध्यंतर ज्ञान, पहले अपनी आत्मा का आदि मध्य अंत बताएंगे सारी सृष्टि की बात बाद में, पहले अपनी आत्मा का आदि मध्य अंत बता दें। फिर वही बात, प्रवेश करके देते, कौन प्रवेश करते हैं, प्रवेश करना भूत प्रेत वाला आत्मा है, कौन है, कैसे पता चले?
तो प्रवेश करते
सृष्टि का बीज है राम, क्या कौन है? आप कहेंगे आप, ओ कहेंगे आप, तो लड़ाई हो गई। साबित तो किसी ने नहीं किया।
हाँ, आत्मा का ज्ञान देते
बाप, आत्मा का ज्ञान देते हैं, सही बात। आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, ये भी मान लिया, लेकिन जो आत्माओं का बाप है वो किस रथ में आता है? कौन है मुकर्रर? कहाँ है वो? कहता आप है, आप हैं। ये लड़ाई हो गई। बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई मानने के लिए इस दुनिया में तैयार नहीं होगा।
ज्ञान क्या है?
क्या ज्ञान बताओ? मैं
बाप आके देते हैं,
बाप आके देते हैं, तो वो बाप कहाँ है?
बाप परम धाम से आते हैं।
परम धाम से आते हैं, चलो मान लिया, ऊंचे से ऊंचे धाम से आते हैं, लेकिन कहाँ आते हैं? कौन मना करता है साकार में नहीं आते? गीता में भी लिखा हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, लेकिन किस तन में आते हैं ये कैसे पता चले? माम एकम, याद करो, वो एक कौन है जिसमें आते हैं? वो पार्टिकुलर होना चाहिए। पार्टिकुलर तो साबित ही नहीं होता। अरे हम कह रहे ये सब देवदेव महादेव है, आप पहले नंबर के देवदेव महादेव।
1936 में
वो तो ब्रह्मा बाबा को हुए, दादा लेखराज को
साक्षात्कार
का अर्थ समझाया।
किसने
समझाया? वो तो मर गया, वो तो शरीर छोड़ गया, जिंदा है,
ब्राह्मण बना ना, द्वीप।
हाँ, ब्राह्मण बना, मान लिया ब्राह्मण बना, लेकिन वो जिंदा है, जिंदा है। कहाँ है दूसरा जन्म?
सामने बैठा है,
ये सामने बैठा है,
बाप आदि देव ब्रह्मा में आते हैं।
कौन है वो आदि देव जिसके सबसे जास्ती बाल सफेद हैं? वो आदि होगा, आपके नजदीक बाजू में ही बैठा है। तो माम एकम याद करो का मतलब ये हुआ कि मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ उसको बाप ने जो ज्ञान सुनाया है, माँ के द्वारा दूध पिलाया है, गीता ज्ञान दिया है, उस गीता ज्ञान के आधार पर, आधार के आधार पर प्रमाणित करो, प्रूफ करो कि शिव बाबा के ब्रह्मा के मुख द्वारा ये वेदवाणी का महावाक्य है जिसके आधार पर वो मुकर्रर रथ साबित होता है। अगर इतना साबित कर सकते हैं तो लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। हम बच्चों में से भी अगर कोई मान लेता है बिना प्रूफ और प्रमाण के, तो आज मानेगा और कल, कल जो टीवी चैनल वाले हैं, अखबार वाले हैं, वेबसाइट वाले हैं, इंटरनेट वाले हैं, रेडियो वाले हैं, वो उखाड़ के रख देंगे। क्योंकि ईश्वर के ज्ञान के आधार पर नहीं समझाना। ईश्वर आता है तो माता के रूप में आता है, पहले माता सहन शक्ति की देवी होती है, सभी माताएं ऐसी होती हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो कौन है ऐसी माता का पाठ बजाने वाली आत्मा है जिसने सहन शक्ति का आधार बन करके दिखाया? कोई ब्राह्मण नहीं कहेगा बेसिक का या एडवांस का कि ब्रह्मा बाबा ने तभी भी हमको मनसा के आधार पर वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से हमको दुख दिया। सब कहते हैं बाबा ने जितना हमको सुख दिया उतना हमको कोई सुख नहीं दे सकता। दुनिया में भी सभी बच्चे कहते हैं माँ ने जैसी हमारी पालना की है ऐसी दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। तो माँ की मुखवंशावली नहीं हो, मुख की बात मानने वाले बच्चे, मुख की बात सुनने वाले बच्चे, मुख की बात को दिल पर धारण करने वाले बच्चे, ये नहीं आज मुख की बात सुन ली, बाबा की वाणी आदियों में सुन ली और कल दूसरों की रज रज के बात है। हाँ ये बात तो सही है, वो बात तो सही है, मुझे भी ऐसा लगता है, बस हो गया सत्यानाश। बाप कहते हैं अगर बाप को पहचाना ज्ञान के आधार पर तो एक से ही ज्ञान सुनना है, औरों से ज्ञान सुना तो विभिचारी ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान विभिचारी हो जाएगा तो वृत्ति विभिचारी हो जाएगी, वृत्ति विभिचारी हो जाएगी, वाचा विभिचारी हो जाएगी, दो दो तरह की वाचा बोलने लग पड़ेंगे। आज एक बात बोलते हैं संसार के सामने कि भगवान आया हुआ है, हम भगवान के बच्चे हैं, कल कहेंगे हम तो मुगालते में आ गए थे, हम तो वहां देखने के लिए गए थे, वास्तव में हम कोई ऐसा थोड़े ही समझ रहे थे कि वो भगवान आया हुआ है, तो डबल डबल बातें करते हैं। तो ऐसी डबल डबल बातें करने वाले डबल धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बन जाते हैं। इसलिए बताया रुद्रमाला, ये रुद्रमाला सारी दुनिया के चुने हुए बीज हैं, सब धर्मों से चुनी हुई बीज रूप आत्माएं, एक धर्म के बीज नहीं है, अनेक धर्मों के बीज हैं। तो उन बीजों में औरों से सुनने के संस्कार, औरों से सुन करके दिल पर धारण करने के संस्कार होंगे या नहीं होंगे? 63 जन्मों के हैं, होंगे तो वो जरूर सुनेंगे, दूसरों की बातें सुनेंगे और सुन करके दिल पर धारण करेंगे और फैसला करेंगे, नहीं ये बाप नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता, जरूर ये शैतान है। तो मामे कम याद करो कि बाप कहाँ पैदा हो जाएगी, मामे कम याद करो का मतलब भी है मुझे एक साकार में आए हुए निराकार को याद करो, ऐसे नहीं आज निश्चय बुद्धि हुए एक को याद करना शुरू किया कल अनिश्चय बुद्धि हो गई किसी की बात सुन करके और दूसरे को गुरु बना लिया, दूसरे को बाप बना लिया, दूसरे की आज्ञाओं को फॉलो करने लग पड़े।
ब्रह्मा
100 साल पूरे होंगे, गुंजार दादी के तन में क्यों आते हैं? अरे मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो दो प्रकार से शरीर छोड़ती है, एक तो साधारण मौत, सामान्य मौत, और दूसरी अचानक मौत। तो जो अचानक मौत होती है जिनकी, वो मौत सूक्ष्म शरीर धारण कराएगी या जन्म लेगा? सूक्ष्म शरीर माने भूत प्रेत का शरीर। तो जो भूत प्रेत का शरीर धारण करेगी, उस भूत प्रेत का जो संस्कार है वो पूर्व जन्म से आएगा या नहीं आएगा? उसके अंदर संस्कार होना चाहिए कि वो अमुक आत्माओं में ही क्यों प्रवेश करता है। तो ब्रह्मा बाबा में ये संस्कार थे पूर्व जन्म के। मुरली में बोला है ब्रह्मा बाबा गुलजार बच्ची को बार बार अपनी ओर बुलाते थे और वो भाग जाती थी। बड़े होने तक भी ये क्रम रहा, वो बाबा के पास नहीं आती थी। फिर बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो फिर किस में आएगी? उसी में आएगी। हाँ जी, जहाँ दिल लगी हुई होगी, जहाँ दिल खिंच रही होगी, वहीं आएगी।
है सत्यनारायण
की पूजा घर में होती है, वैसे 500-700 करोड़ आत्माओं की मुक्ति भगवान की वाणी सुने बगैर, भगवान के पार्ट को प्रैक्टिकल में पहचाने बगैर, भगवान के उस साकार प्रैक्टिकल रूप को देखे बगैर, भले फोटो में देखे, अखबार में देखे, इंटरनेट में देखे, टीवी चैनल में देखे, लेकिन देखे बगैर उसकी मुक्ति होगी? याद करेगी? तो झाड़ के ऊपर चित्र रखा हुआ है, दुनिया की सभी आत्माएं ऊपर जा रही है चतुर्थदेश युद्ध में, तो किसको याद करेंगी? निराकार को याद करेंगी या साकार को? याद करना सहज होता है, साकार को याद करेंगी, पहचानेंगी, ज्ञान सुनेंगी तब याद करेंगी या बिना सुने याद करेंगी? अरे भगवान का ज्ञान सुनेंगी या नहीं सुनेंगी? सन्मुख सुनेंगी, उनकी बात अलग बताई। जो सन्मुख सुनेंगी उनके पूर्व जन्म के सारे पाप भस्म हो जाएंगे, जैसे सूर्य की रोशनी में सारा कचरा सारी बदबू खत्म हो जाती है। बाकी सब तो नहीं सुनेंगे सन्मुख होकर के, जो नहीं सुनेंगे उनकी नंबर वार गति होगी। ब्रह्मा की आत्मा सन्मुख आके सुनेगी है? अपने शरीर से सुनेगी नहीं, वो किसी में प्रवेश होकर के दूसरे की आंखों से देखेगी और दूसरे के कानों से सुनेगी, तो बदल नहीं जाएगी बात, बात बदल जाएगी। हाँ,
कोई तो ब्रह्मा के पूजे बाबा
बनेंगे? नहीं बने हैं और अभी भी बन रहे हैं। शिव बाबा को माने शिव की आत्मा का इंट्रोड्यूस किया, वो आत्मा कोई शरीर में प्रवेश है, वो आत्मा शिव बाबा है। वो देहधारी की आत्मा शिव बाबा नहीं है, इसलिए शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता।
की तरफ वो आकर्षित हो गए अच्छी तरह
है। हाँ, अभी भी वो ही बात है, जैसे राम के भक्त है वैसे कृष्ण के भक्त, दोनों है आंखों के अंधे। अगर देहधारी को याद करते हैं सिर्फ, अगर ये समझ के याद करते हैं कि शरीर ये है, पुतला ये है और इस पुतले को चलाने वाली आत्मा शिव है, तो शिव बाबा याद करते हैं। हाँ है चलाई
शंकर बाबा की मूर्ति चलाई
है,
शंकर बाबा की मूर्ति चलाई।
मुरली किसे कहा जाता है? अंग्रेजी में लिखो मुरली, मुरली। जैसे सन 76 में जयप्रकाश नारायण गुजरात से निकला, साथ में साथ ही कृष्ण मुरारी देसाई निकला, जनता पार्टी निकली, अज्ञानता नहीं। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी जयप्रकाश नारायण भी गुजरात से निकला और साथ में कृष्ण मुरारी देसाई की आत्मा भी साथ में निकली। जनता पार्टी रूपी ज्ञानी आत्माएं निकली या ज्ञानी आत्माएं निकली? निकली ना। ऐसे ही अभी नरेंद्र मोदी फिर गुजरात से निकले, नाम क्या है? नर इंद्र मोदी। नर माने मनुष्य, मनुष्यों में कैसा इंद्र वैसा राजा जो सारे भारतवासियों की बुद्धि को मोड़ दिया, पटाख से मोड़ा या नहीं मोड़ा? तो हद में नरेंद्र मोदी है तो बेहद में नरेंद्र मोदी नहीं है क्या? है या नहीं है? तो वो मुरली जिसे कहा जाता है वो मुरली वो ही है जिसे बाबा ने बोला है कि अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, जो मनुष्यों की बुद्धि को मोड़ करके मनुष्य से मृत्यु से मृत्यु लोक से अमर लोकवासी अमर देवता बना दे। मुरली का मतलब ही है मुरली। ब्रह्मा बाबा ने शिव के कोई वाक्य को अर्थ सहित मोड़ के नहीं दिखाया। दही हो चाहे दूध हो उसमें मथानी घुमाई जाती है, दही को बार बार मोड़ा जाता है, दूध को बार बार मोड़ा जाता है तो सार निकलता है। उस सार को कहते हैं ज्ञान अमृत। उस समय बाबा ने मुरली में बोल दिया अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, माना ब्रह्मा के द्वारा जो भी बातें बोली वो गीता ज्ञान अमृत नहीं है। जिस अमृत को पी करके मनुष्य से देवता बन जाए। मुरली अभी है या मुरली तब थी? है अभी है। वो कृष्ण की मुरली जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं वो काठ की मुरली है या सच्ची मुरली है? सख बुद्धि है। काठ की मुरली क्यों दिखाई? इसलिए दिखाई कि जिस मुख के द्वारा बोली गई वो कठ बुद्धि था। उन वाक्यों के उन महावाक्यों के गहरे मनन चिंतन मंथन में नहीं जा सकता। वो पार्वती का पिता हिमवान या हिमालय राज कहा जाता है। हिम माने बर्फ, जो बर्फ से ढका रहता है। बर्फ बहती है या जाम रहती है? तो उसकी बुद्धि में ज्ञान जमा हुआ था, बहता हुआ ज्ञान नहीं था। बुद्धि जाम थी, बच्चा बुद्धि था। उसको वास्तव में मुरली नहीं कहेंगे। और अगर भगवान की मुरली कहें तो दादा लेख राजा वाली आत्मा जिसको गीता में भगवान माना गया, भक्त लोग गाते हैं कृष्ण नारायण वासुदेव, तो वो सतयुग के नारायण को समझते हैं या संगम को जानते हैं? सतयुग के नारायण को जानते हैं। वो जिस नारायण को कृष्ण समझते हैं वो कृष्ण वाली आत्मा का तो गायन ही नहीं है शास्त्रों में। सतयुग त्रेता का शास्त्रों में कोई गायन है? है नहीं है। कौन सी कृष्ण का गायन है? संगम युगी कृष्ण का गायन है। संगम युग में जो राम वाली आत्मा शरीर के साथ है, जिसमें वो वसु धन संपत्ति का भंडार प्रवेश करता है और प्रवेश करके नाम देता है कृष्ण या नारायण। नार माने जल, आयन माने घर। जिसका घर कहाँ है? जिस आत्मा का घर ही है ज्ञान जल में, जो क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं, वो क्षीर सागर वाला विष्णु जिसे हम वसु का पुत्र क्या कहें? वसुराज कहें, कृष्ण कहें। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला, आकृष्ट है, आगे आगे खींचने वाला। तो अंतिम समय में जब दुनिया में चतुर्थ विश्व युद्ध होगा तो कौन आत्मा खींचेगी? दादा लेखराज की आत्मा खींचेगी या कोई और आत्मा है जो खींचने का निमित्त बनेगी? निमित्त माने साकार। कौन निमित्त बनेगा? वो ही कृष्ण हुई, उसी को कहेंगे बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने तो भारत की आत्माओं को मोड़ लिया, मोड़ा या नहीं, धक्क से मोड़ लिया। और ये मोदी सिर्फ भारत की आत्माओं को मोड़ेगा या सारी दुनिया की आत्माएं मोड़ जाएंगी? सारी दुनिया की आत्माएं उस परम धाम की ओर और परम धाम के रहवासी की ओर मुड़ेंगे। कृष्ण को फॉलो करेंगे, जिस कृष्ण का चित्र बाबा ने बनवाया था, पांव से नरक की दुनिया को लात मारता है और बुद्धि रूपी हथेली में स्वर्ग को कैच करता है। दुनिया की सभी आत्माएं उस कृष्ण को फॉलो करेंगी, इस दुनिया को, दुखदाई दुनिया को बुद्धि योग से पकड़ेंगी, है लात मारेंगी और परम धाम की ओर बुद्धि मुड़ जाएगी, जीवन मुक्ति की ओर बुद्धि मुड़ जाएगी। और
सारी चार
लाखी
आत्माएं हैं, वो भी नौ धर्मों में विभक्त रहने 50-50 जाति है, जो गरीब भी जो ब्राह्मण है 50-50
हाँ,
वो भी 50-50
हाँ, वो भी ऐसा नौ धर्मों में मतलब विभक्त करेंगे। जो कृष्ण और उर की पीढ़ी है, सतयुगी कृष्ण, उसकी पीढ़ी अलग अलग धर्म के नारायण बनते हैं या नहीं बनते हैं? कृष्ण जैसी जो आत्माएं हैं, दादा लेखराज जैसी जो आधारभूत आत्माएं हैं, जो चंद्रमा के रूप में अभी बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है, उसके मानिंद उसकी पीढ़ी में आने वाली और आत्माएं हैं नारायण बनने वाली या नहीं? जो गिरती कला में जाती है, कम कला के नारायण बनती है और कमजोर होने के कारण द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, तो कृष्ण को फॉलो करेंगी या नहीं? है? करेंगी। ऐसे ही जैसे कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करती है, वो आत्माएं भी अपने अपने ग्रुप में जो उनके बीज रूप बाप होंगे उनमें प्रवेश करके पाठ में जाती है। और साढ़े चार लाख प्रजा है या राजा है, है? प्रजा वर्ग की, उन प्रजा वर्ग में राजाएं कितने हैं? 108। उन 108 राजाओं को भी 100 राजाओं को भी कंट्रोल करने वाले वास्तव में कितने हैं? 8। तो जैसे यहाँ 8 हैं, वैसे सतयुग में वो आधार मूर्त नारायण भी 8 है। ये बीज रूप बाप हैं, तो जो बीज रूप बाप हैं उनके 9 ग्रुप बनते हैं माला में। वो 9 ग्रुप अलग अलग धर्मों के होंगे या एक ही धर्म के होंगे? अलग अलग धर्मों का उनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है। वो छिलका किसी का बहुत पतला है और कोई का छिलका बहुत मजबूत और बहुत मोटा है। ज्यादा डंडे कौन खाएगा, है? जो ज्यादा मजबूत और ज्यादा मोटा छिलका है बहुत डंडे खाएगा। बाप तो ज्ञान के डंडे मारते हैं, धर्मराज के डंडे बाप नहीं मारते। तो बाप के जो ज्ञान के डंडे हैं वो खाते खाते जो अरुचि जिनको पैदा हो जाती है, अरे बाबा तो बोई बोई बातें रोज रोज सुनाते हैं, हम रोज क्लास में जाके क्या करेंगे, क्लास में जाना ही बंद कर देते। तो दूसरों की बातों का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है? रोज अगर बाप की वाणी सुनेंगे, रोज ब्राह्मणों के संगठन में बैठेंगे तो संभव शक्ति कलव युगे संगठन की ताकत पैदा होगी। बड़े से बड़ा संगठन, पावरफुल से पावरफुल संगठन है ब्राह्मणों का। ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पावरफुल बन जाएगा जो दुनिया की कोई भी विकारी आत्मा इसमें पांव भी नहीं रख सकेगी। तो संघ का रंग लगेगा, है? अभी तो सब मिक्स हैं, कुछ पता नहीं लगता है कि कौन कहां कहां पांव रखते हैं। बुद्ध रूपी कोई भक्ति मार्ग के आसाराम बापू में भी जाते, कोई निरंकारी संप्रदाय में भी जाते, कोई हंसा जी के महाराज के संग में भी जाते, कोई भक्ति मार्ग के मंदिरों में भी जाते, कोई भक्ति मार्ग के टंट घंट भी करते हैं कि नहीं करते? तो सब तरह के हैं, यहाँ है तो बीज। बाप के घर में जाके जन्म तो लिया, लेकिन वो जन्म नहीं है जैसे दुनिया में बच्चा जन्म लेता है। क्या दुनिया में बच्चा जन्म लेता है तो जो देखे उस बच्चे को वो क्या कहेगा, बच्चा आया या नहीं आया? आया। पड़ोसी भी कान से आवाज सुनेगा वाह 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 तो क्या कहेगा, पड़ोस में बच्चा आए। यहाँ भी ऐसे ही है, जब ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी पक्की राजधानी बाप आकर के दत्त से स्थापन करते हैं तो जो सुनेंगे इन आंखों से, जो कानों से सुनेंगे दो शब्द भी, उनकी बुद्धि में पक्का बैठ जाएगा भगवान बाप आ गया। जो इन आंखों से देखेंगे उस प्रैक्टिकल मूर्ति को जो बाबा ने बोला है कि तुम बच्चों की नंबरवार अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी, तो अव्वल नंबर जो अव्यक्त स्टेज है बाप की, जिसे अल्लाह अव्वल दीन कहा गया है, उसको जो देखेगा इन आंखों से वो सदाकाल के लिए बुद्धि में बैठ जाएगा कि मेरा बाप आ गया, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला। माना अभी बच्चों की जो पैदाइश हो रही है वो पैदाइश एवरलास्टिंग पैदाइश है या मृत्युलोक की पैदाइश है? है? मृत्युलोक की पैदाइश है। जैसे गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो जिस गर्भ पिंड में प्रवेश किया वो गर्भ पिंड देह का पुतला है, अविनाशी पुतला है या विनाशी पुतला है? हैं? विनाशी पुतला है। उस विनाशी पुतले में आत्मा ने प्रवेश किया, प्रवेश किया तो उसको जन्म होना कहेंगे? हैं? नहीं। तो ऐसे ही ये वाराणसी में जो बीज रूप आत्माएं हैं वो जन्म लेती है, पक्का पक्का प्रूफ और प्रमाण लेकर के जन्म नहीं ले रही है। जैसे भक्ति मार्ग में गायन है कि काशी में करवट खाते थे तो जो करवट खाते थे उनके पूर्व जन्म के पाप भस्म हो जाते थे। ऐसे नहीं कि दोबारा पाप बनते नहीं थे, उस समय सारे पाप भस्म हो गए। फिर जन्म लेते हैं कि नहीं? फिर जन्म लेते हैं, फिर पाप बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे यहाँ भी है, जिस गर्भ पिंड में विश्वास धारण करते हैं बाप का बच्चा बनते हैं, वो गर्भ पिंड अभी भी ब्राह्मणों की इस संगमित दुनिया में देह अभिमानी है या आत्मा अभिमानी है? अभी क्या है? देह अभिमानी है। इसलिए वो काशी करवट खाने वाले पिछले जन्म के पाप तो भस्म होते हैं, लेकिन फिर दोबारा कोई न कोई की बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। और प्रभाव में आने से क्या होता है? प्रजा बन जाते। जैसे कोई माता में गर्भपिंड में आत्मा आई और जब आत्मा आ गई फिर माता की जो आसक्ति है अपने पति से छूट करके कोई दूसरे पति में लग जाती है, उसे याद करती है, तो उस बच्चे का चेहरा मोहरा बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। ऐसे यहाँ भी बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया कि एक बार बाप का बच्चा बना तो फिर माम एकम याद करो। उसके लिए जरूरी है कि कोई दूसरा याद ना आए, तो एक से सुनना है, एक को रज रज के देखना है, एक में प्रीति लगानी है, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है दिल लगाकर इंद्रियां जहां रस लेंगी वो याद जरूर आएगा। आंखों से देखेंगे तो याद आएगा, बाप तो कहते हैं। बच्चों की 10-20-50 भूले दृष्टि की जरूर होती है, सारे दिन में। अब बताओ इतनी भूले होती हैं संग की रंग की, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है या नहीं लगता है? लगता है। इसलिए गिरावट आती है। फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, सात दिन की भक्ति का फाउंडेशन एकदम मजबूत हो, कोर्स का फाउंडेशन मजबूत हो, तो पुरुषार्थ की बिल्डिंग अच्छी चलेगी। अपना आरंभ देखें कि जब हमको आत्मा का ज्ञान मिला तो उसी समय से आत्मा रूपी ज्योति बिंदु को भ्रकुटी के बीच में याद करने की पक्की पक्की प्रैक्टिस करना शुरू किया या नहीं किया? कच्चापन तो नहीं रह गया? अगर कच्चापन रह गया तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बन सकती। ये 84 जन्मों की बिल्डिंग है, 84 मार की बिल्डिंग। ओम शांति।